हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण आरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की अपार कृपा से श्रीमद् भागवत जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है उसके दूसरे दिन के सत्संग में आप सब श्रद्धा से पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आहुजा परिवार जिन्होंने इस सत्संग का आयोजन किया है, इस परिवार का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और गोपी माता जी, गोपी क्या, गोपी प्रिया, गोपी प्रिया देवी, जिनके प्रयास से यहाँ भक्ति वृक्ष में से आप सब लोग कृष्ण भावना अमृत संघ से जुड़े हैं और वो आपके संग में यहाँ पधारे हैं, उनका भी स्वागत करके आभार प्रकट करते हैं। भागवत में कल हमने भागवत का महात्म सुना, पहले तीन श्लोकों में भागवत का मंगलाचरण सुना, फिर छह प्रश्न सनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से नैम शरण्या में पूछे और उन छह प्रश्नों के उत्तरों के अंतर्गत मुख्य उत्तर सबके लिए एक श्रेयकर कार्य परम धर्म है भगवान के प्रेम को प्रकट करना और सब शास्त्रों का सार है भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करना। और फिर भक्ति कैसे की जाए इसका कल हमने श्रवण किया भक्तों के संग में भागवत के श्रवण करने से आत्म साक्षात्कार के पथ के ऊपर अग्रसर होते हैं। फिर सृष्टि करने के लिए भगवान, सृष्टि का मतलब ये संसार, सृष्टि भगवान की लीला है। भगवान अगर हम सबको पैदा न करें तो प्रलय के समय सोए हुए जीव अगर जागे नहीं तो उनको फिर मौका कैसे मिलेगा दोबारा अपने जीवन को सुधारने का। तो भगवान की बहुत बड़ी दया है, कृपा है, करुणा है सृष्टि, और ग्रस्त लोग आप भगवान के सृष्टि लीला में सहयोगी है। सृष्टि कैसे होगी, भगवान को मानव को इस धरती के ऊपर भेजेगा तो किसी गृहस्थी के घर में ही तो जन्म लेगा। तो ये भगवान की सृष्टि लीला में सहयोग है, बाकी तो जोनियों की सृष्टि भगवान करते हैं। वो सारी जितनी भी 84 लाख जोनियों में मानव को छोड़ के जोनियां, उनमें कर्म करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, उनको भोग यूं नहीं बोलते हैं। जो उन्होंने कर्म किया है उसका फल भोगते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन वो नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म केवल मानव कर सकता है, केवल मानव को नया कर्म करने का अधिकार है। तो मानव की सृष्टि भगवान की करुणा कृपा है और इस सृष्टि करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो आदि पुरुष है वो सृष्टि कार्य के लिए अपने सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी को प्रकट करते हैं और बलराम जी सृष्टि के कार्य के लिए अपने आप से तीन विष्णु को सर्जन करते हैं। एक कारण सागर में सहन करने वाला महाविष्णु जिसके रोम कोपों से ब्रह्मांड निकलते हैं, दूसरा हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाला विष्णु जो अपने स्वयं ही जल को प्रकट करते हैं और गर्भ सागर में सहन करते हैं, उसको गर्भ सागर में सहन करने वाला विष्णु कहते हैं। उसकी नाभि के स्थान से एक कमल का डंडा निकलता है जिसके ऊपर कमल का फूल, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का प्रकट्य होता है। और फिर ब्रह्मा जी भगवान गर्भदक्षाई विष्णु की प्रेरणा से सृष्टि करते हैं। और तीसरा विष्णु क्षीर सागर में सहन करने वाला, ये सबके हृदय में परमात्मा के रूप में कण कण में अणु में परमाणु में प्रवेश करते हैं, तभी सब चीजें अपना कार्य कर सकती हैं। तो ये सृष्टि के लिए भगवान के तीन विष्णु के अवतार होते। फिर भगवान के 24 अवतारों का नाम गिना के वर्णन किया है। चार कुमार अवतार ब्रह्मा जी से, नारद जी के अवतार का वर्णन है, मत्स्य अवतार का वर्णन है, नरसिंह अवतार का वर्णन है, रामचंद्र के अवतार का वर्णन है। ऐसे अवतार गिनाते गिनाते कृष्ण बलराम के अवतार का वर्णन करने के बाद परशुराम जी का वर्णन किया, कृष्ण बलराम का वर्णन किया, और फिर एकदम कलयुग में आने वाले बुद्ध का वर्णन किया, और उसके बाद कलयुग में आने वाले कल्कि अवतार का वर्णन करके व्यासदेन सावधान होकर सोचते हैं कि मैंने कृष्ण को आम अवतारों के साथ गिनती कर दिया, ये तो ठीक नहीं। श्री कृष्ण अवतार नहीं है, सारे अवतारों का स्रोत है, अवतारों का आदि कारण है, अवतारी पुरुष है, अवतार नहीं। तो भागवत का महावाक्य श्लोक, भागवत का परिभाषा सूत्र श्लोक, परिभाषा सूत्र श्लोक का मतलब होता है पूरे शास्त्र के अंदर जो कुछ भी है श्लोक के ऊपर ही केंद्रित है, ये श्लोक उसका केंद्र बिंदु है। तो ये परिभाषा सूत्र, एते चांश कलाह पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, व्यासदेव ने लिखा और सुखदेव जी कह रहे हैं और सूत गोस्वामी उसी को पुनः आवृत्ति करके कह रहे हैं कि ये जितने भी अवतार गिनाए कहे ये सब भगवान के अंश हैं, या अंशों के अंश हैं या कला हैं, उसमें कुछ भगवान ने अपनी कला भर दी, लेकिन भगवान जो स्वयं है वो श्री कृष्ण है, ये उसके अंश और कला है। जैसे कोई आदमी कहे कि आज हमारे घर सारे मेहमान आ रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री भी आ रहा है, तो प्रधानमंत्री भी मेहमान है लेकिन सबसे अलग है। तो ऐसे ये सब अवतार हैं लेकिन कृष्ण इन सबसे अलग है। तो ये परिभाषा सूत्र है भागवत का, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने लोक हैं उतने विष्णु हैं क्योंकि पालन करना है, जितने लोक हैं उतने शंकर हैं, जितने लोक हैं उतने ब्रह्मा हैं। तो अनंत कोटि लोक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर है, लेकिन ये सबका आदि स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। और फिर छठे प्रश्न का उत्तर देते हुए, छठा प्रश्न क्या है, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए लीला को पूरी करके 125 साल के बाद, तो फिर भगवान ने धर्म स्थापित करने के लिए आए थे, तो अब धर्म किसके शरण में गया, अब धर्म का देखभाल कौन करेगा, धर्म की स्थापना करने का कार्य किसके पास है। इसका उत्तर दिया कि जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वधाम जा रहे थे तो भागवत रूपी प्राण के सूर्य का उदय हुआ जो अज्ञान के लोगों को प्रकाश देके और धर्म का मार्ग दिखाएगा। तो इससे सिद्ध क्या होता है, इससे सिद्ध यह होता है कि श्री कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं, जो कार्य श्री कृष्ण के द्वारा हो रहा था वही कार्य भागवत के द्वारा संपन्न होगा। ये छठे प्रश्न का उत्तर इस बात को प्रमाणित करता है कि कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं। भागवत का मतलब है भगवान के समान। और इसके बाद कल कथा जहां से शुरू की थी कि अब यहां प्रश्न ये आया कि मैं आपको भागवत कथा सुनाऊंगा, ऐसे सुखदेव सूत गोस्वामी ने कहा। तो ऋषि ने पूछा भागवत कहां प्रकट हुई, किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई। सूता ने कहा क्या कि मैं अभी अभी परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज भागवत सुना रहे थे, जो राजपाट का परित्याग करके अनशन करके गंगा जी के तट पे बैठे थे और सुखदेव महाराज ने उनको भागवत सुनाया और मैं वहां से सुन के आया हूं। तो इसके ऊपर प्रश्न उठे कि भागवत किसने लिखा, कहां लिखा, किसकी प्रेरणा से लिखा, कब लिखा, ये तो भागवत के ऊपर प्रश्न उठे। फिर ये प्रश्न उठा कि सुखदेव महाराज कभी 7 मिनट कहीं रुकते नहीं है, वो तो ब्रह्म आनंद में मगन रहते हैं, उन्होंने भागवत पढ़ा कैसे, 18,000 श्लोक का अध्ययन कैसे किया। और फिर एक प्रश्न है कि परीक्षित अभी नौजवान था, पूरे इस पृथ्वी का एक छत्र राजा था, उन्होंने राजपाट का त्याग क्यों किया। तो ये प्रश्न जब पूछे गए तो पहले प्रश्न का उत्तर कल हमने आपको बताया, भागवत बद्रिकाश्रम में व्यासदेव के द्वारा नारद जी की प्रेरणा से द्वापुर के कलयुग के प्रथम चरण में प्रकट हुआ। ये कल आपके हमारी कथा इसके ऊपर विशेष रूप से थी कि भागवत किस कहां बद्रिकाश्रम में, किसके द्वारा, व्यासदेव के द्वारा, किसकी प्रेरणा से, नारद जी की प्रेरणा से, कब, कलयुग के आरंभ में, सब शास्त्रों को प्रकट करने के बाद अपनी परिपक्व अवस्था में व्यासदेव ने भागवत को प्रकाशित किया। अब यह प्रश्न है कि सुखदेव जी ने भागवत कैसे पढ़ी, क्योंकि सुखदेव जी के लिए लिखा है कि उस वो एक तो पहले तो व्यासदेव को कोई संसार में शादी विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन भागवत को सिखाने के लिए शिष्य की जरूरत थी और पुत्र और शिष्य में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए उन्होंने जाबाल मुनि की पुत्री वाटिका के साथ विवाह किया। और सुखदेव जी मां के उदर में तो आए लेकिन जन्म नहीं ले रहे थे। व्यासदेव ने कहा बेटा तुम संसार में आ जाओ, बोला नहीं माया पकड़ लेती है संसार की, संसार में बेटा नहीं पकड़ेगी, बोला माया आपके वश में है क्या। भगवान श्री कृष्ण तब तक इस धरती के ऊपर प्रकट हो चुके थे, व्यासदेव ने श्री कृष्ण को प्रार्थना की, श्री कृष्ण ने कहा सुखदेव तुम प्रकट हो जाओ, बोला माया मेरी माया आपको नहीं स्पर्श नहीं करेगी, छुएगी भी नहीं। तो सुखदेव महाराज प्रकट हुए और प्रकट हुए तो छोटे बच्चे की तरह नहीं, उनका नाल जो है जनोई की तरह पहना हुआ था, कोई संस्कार वंस्कार नहीं किया, पहले से सिद्ध थे और चल दिए, सामान्य बच्चे जैसा जन्म नहीं हुआ। व्यासदेव पीछे कह रहे बेटा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, रुको। तो पेड़ों से आवाज आया कि किसको बेटा कह रहे हो, सबके हृदय में रहने वाला परमात्मा इसको सब जगह दिखता है। और फिर कितने ऊंच कोटि का सुखदेव महात्मा था ये भागवत में लिखा है। एक सरोवर में नारियां नहा रही थी, सुखदेव निर्वस्त्र आगे से जा रहे थे, दिगंबर वेश में, कुछ नहीं पहना हुआ था, नव युवक 16 साल के थे। नारियों ने कोई लज्जा नहीं की, उसका नोटिस ही नहीं लिया। उसके पीछे उसका पिताजी व्यासदेव वस्त्र पहने हुए बेटा बेटा कहते जा रहे थे, नारियों ने लज्जावश वस्त्र पहने और व्यासदेव को प्रणाम किया। व्यासदेव को आश्चर्य लगा, बेटी मेरा बेटा नौजवान जा रहा था, उससे तो आपको संकोच हुआ नहीं, मैं आपके दादा के समान और वस्त्र पहने हुए हैं, आप संकोच कर रहे हो, मुझे आश्चर्य लग रहा है। वो देवियां कहने लगी आपके बेटे को स्त्री पुरुष के भेद का पता नहीं है, पेड़ में और पर्वत में अंतर का पता नहीं है, उसको तो सिर्फ ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, उसको देखने से हमारे हृदय में कोई विकार नहीं आया, कोई विचार भी नहीं आया, आप ग्रस्ती हैं, आपको स्त्री पुरुष के भेद का पता है, तो मर्यादा में हमने आपका सम्मान किया। इस कोटि का सुखदेव महाराज वन में चला गया। तो व्यासदेव ने अपने शिष्यों को कुछ भागवत के श्लोक कंठ कराए, पाठ कराए, कहा कि जहां सुखदेव ध्यान में बैठता है यहां पढ़ा करो। तो जब लकड़ी लेने के लिए यज्ञ के या फूल लेने के लिए व्यासदेव के शिष्य जाते थे तो एक दिन एक श्लोक पढ़ रहे थे, भगवान की सुंदरता का वर्णन है श्री कृष्ण का, ये श्लोक गोपियां गाती हैं पहले वेणु गीत में, जहां भगवान की बांसुरी की महिमा गाती हैं, तब कहती हैं, ब्रहा पीड़म नटवर वपु करणियो करणी कारकम। ब्रह कहते हैं मोर पंख को, जो अपने सर के ऊपर मोर पंख को धारण करते हैं, गले में वैजंती पुष्प सुगंधित तुलसी मंदार आदि सुगंधित पुष्पों की माला पहनते हैं, और घुटनों तक वो लंबी माला होती है। कान के ऊपर कनीर का पुष्प, दोनों कानों में से एक के ऊपर एक कनीर का पुष्प होता है। अधरों के ऊपर, होंठों के ऊपर बांसुरी को रखकर और अपने ग्वाल बालों के संग में वन में प्रवेश करते हैं नटवर। वैसे नट कहते हैं नाचने वाले को, और शंकर जी को नटराज कहते हैं, नाचने वालों के राजा हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान को नटवर कहते हैं, नटराज भी, जिसका वर्ण करने के लिए गोपी बनके वृंदावन में आया और गोपेश्वर महादेव के नाम से आज भी पूजा जाता। तो श्री कृष्ण नटवर हैं। तो सुखदेव महाराज ब्रह्मानंद को भूले और भागे, कौन है? बोले गुरु जी को पता है। तो सुखदेव ने सोचा, सुंदर तो बहुत है लेकिन स्वभाव कैसा है, कैसे पता लगे? प्रायः सुंदर लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं होता, उनको घमंड होता है। सुखदेव वापस ब्रह्मानंद में चले गए। वो व्यासदेव के शिष्य एक और समय में वहां से जाते हुए भगवान की दयालुता का वर्णन करते हुए तीसरे स्कंद भागवत से उद्धव से मुख से गाया हुआ ये श्लोक, आई बकी कालकूटम, बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन के ऊपर कालकूट विष लगाकर मारने के लिए आई थी, कृष्ण ने उसके विष को नहीं देखा, उसके दूध पिलाने वाले भाव को देखकर उस असाध्वी को भी धात्री गति मां के समान गोलोक में यशोदा की सेविका के स्थान दे दिया, इससे ज्यादा और कौन दयालु होगा, किसके शरण में जाए। ये स्वभाव सुनते ही सुखदेव महाराज अधीर हो गए, ब्रह्मानंद को छोड़ के भागे और कहा ये कौन है? तो कहा गुरु जी के पास। तब सुखदेव महाराज व्यासदेव के पास आए और 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। और फिर यहां श्लोक भागवत में ये लिखा है कि ये भागवत इतनी रसीली है कि जो आत्मा राम है अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो आनंद में मगन रहते हैं, उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये ग्रंथ ऐसा है कि इसकी लीलाएं बड़े बड़े, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध शंकराचार्य के अनुयायी मधुसूदन सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु के थोड़ा पीछे 400 साल करीब हुए होंगे, बनारस में थे। वो कृष्ण के प्रेम में इतने मुग्ध हो गए, कहते थे कि मैं अद्वैत के शिखर के ऊपर था, इन गोपियों के साथ रास क्या करने वाले कृष्ण ने मेरे को वहां से खींचकर वृंदावन की धूल में लोटपोट होने के लिए बाध्य कर दिया, और मैं कृष्ण को छोड़ के और कोई तत्व अब नहीं जानता। बड़े बड़े महात्मा, अमल आत्मा। एक और बनारस में बड़े अद्वैत आचार्य वेदांत के थे, तो किसी ब्राह्मण के घर में भागवत था, उसके घर में कोई सूतक हो गया तो उसको पढ़ना नहीं था, कहा महाराज आप भागवत का पाठ कीजिएगा। बोला भागवत मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं तो उपनिषद पढ़ता हूं, वेद पढ़ता हूं। बोला महाराज हमारा नियम है आप पढ़ लेना। उसने भागवत को एक बार पढ़ा, भागवत को पढ़ने के बाद वो भागवत को छोड़ नहीं सका, सारे पुस्तक और बनारस छोड़ के वृंदावन में आ गया और गौरिया वैष्णव संप्रदाय से जुड़ गया और पूरे ब्रज में प्रचार करने लगा, कौन कौन कहता है कि भगवान का रूप नहीं है, कौन कहता है कि भगवान निराकार है, मेरे से आके बात करके देखो। बड़े प्रसिद्ध प्रचारक हुए हैं। तो भगवान के इतनी सुंदर कृष्ण की लीलाएं हैं कि बड़े बड़े ब्रह्म आनंद में मगन महात्माओं को भी आकर्षित कर लेती हैं। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि परीक्षित महाराज ने परीक्षित महाराज ने नवयुवक अवस्था में राजपाट का परित्याग क्यों किया? तो इसके उत्तर में क्या उत्तर ये आता है कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला, ब्राह्मण ने श्राप दिया। लेकिन श्राप देने से पहले परीक्षित के जन्म की कथा बता रहे। अब कल आपको हमने बताया था 19 अध्यायों के इस पहले स्कंद में 12 अध्यायों में परीक्षित महाराज के कुल में 3 भागवत माताओं की महिमा है, जिनकी भक्ति के प्रताप से परीक्षित जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके लिए भागवत का अवतार हुआ। 3 उसके पितृ कुल मतलब पिता के कुल के महापुरुषों का वर्णन है जिनके लिए भगवान सामने होके दर्शन दिया और भगवान का दर्शन करते हुए भगवत धाम गए। तो कथा में यह वर्णन आता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, आखिरी दिन कौरवों की सेना में 17 अक्षौणी सेना में केवल 3 व्यक्ति जीवित बचे और दुर्योधन घायल पड़ा था आधा मरणिंग हालत में। 3 पुरुष कौन बचे हुए थे? एक अश्वत्थामा, एक कृपाचार्य और एक कृतवर्मा यदुवंशियों का सेनापति। ये दुर्योधन के पास गए जो मरा हुआ था और अश्वत्थामा ने कहा, महाराज आपने मुझे अगर सेनापति बनाया होता तो मैं अपने पिता का बदला लेता। तो दुर्योधन उस हालत में भी अपने खून का तिलक लगा के कहा कि आप सेनापति हो, बोला मैं पांडवों को मार के लाता हूं। तो क्षत्रिय के खून से ब्राह्मण के माथे पे तिलक लगा, बड़ा अवद्रम हो गया। ये 3 लाख जाके एक पेड़ के नीचे रात को बैठे, पेड़ के ऊपर हजारों पक्षी बैठे थे, एक उल्लू आया सबको मार के गिराया और अश्वत्थामा ने उल्लू से शिक्षा ली और कहा अभी चलो, एक अक्षौणी सेना पांडवों की बची हुई है। अरे रात को कोई युद्ध करता है सोए हुए को मारता है? बोला मैं सेनापति हूं, आपको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो दोनों गुरुवर थे, बोला हमने सोए को मारेंगे। बोला ठीक है आप बाहर खड़े हो जाना, जो भागे वो जागेगा और जागे उसको आप मारना, मैं अंदर जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, 5 पांडवों को और सात्यकी को लेके कहा कि जब राजा की विजय हो जाए तो उसको कभी भी अपने शिविर में नहीं सोना चाहिए, कुछ भी षड्यंत्र हो सकता है, राजनीति हो सकती है। तो भगवान वहां नहीं थे, 5 पांडव वहां नहीं थे और सात्यकी वहां नहीं था। अश्वत्थामा शंकर जी का रुद्र का अवतार है और ये विनाश के लिए ही आया है। अश्वत्थामा ने जाकर शिवर के अंदर सोए हुए लोगों को मारना शुरू किया, दृष्टद्युम्न को घट घसीट के मारा, बहुत पीड़ा दे के मारा द्रौपदी के भाई को जिसने द्रोणाचार्य का गर्दन काटा था। 5 द्रौपदी के पुत्र सोए थे उनका गर्दन काटा और उठा के जाके दुर्योधन का कहा ये 5 पांडवों को मार के आ गया। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, मेरे दुश्मन मेरे मरने से पहले मर गए। लेकिन विश्वास नहीं आ रहा था, ये भीमसेन के सर के ऊपर मेरी गदा की चोट लगाने से ठन ठन होता था, कभी मरता नहीं था, ये कैसे गर्दन काटा होगा? लाओ मेरे को दिखाओ तो पांडवों के गर्दन है क्या? उसने गर्दनों को ऐसे दबाया तो नारियल की तरह वो पिचक गए, बोला ये पांडवों के नहीं। और उसको बड़ी पीड़ा हुई कि मेरे द्वारा बालों की हत्या हुई और सोए लोगों की हत्या की और दुर्योधन के प्राण निकल गए। उसको ये शराप था कि जिस दिन तुम्हें खुशी और दुख साथ में मिलेगा, हर्ष और शोक होगा, उस दिन तुम्हारे प्राण निकलेंगे और दुर्योधन यहां समाप्त हो गया। अब अश्वत्थामा ने बाल हत्या की थी इसलिए भयभीत हो गया, भागा। और सुबह भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर आए तो देखें द्रौपदी विलाप कर रही है, अपने पुत्रों के लिए रो रही है, 5 पुत्र मारे गए, भाई मारा गया, तो हाहाकार मचा है। तो अर्जुन अपनी प्रिय द्रौपदी को आश्वासन देने के लिए कहा कि जिसने आपके बेटों का गर्दन काटा है उनका गर्दन काट के लाऊंगा, उसके गर्दन के ऊपर खड़ी होकर अपने पुत्रों का आप श्रद्धांजलि देना, जलांजलि देना। और फिर कृष्ण को कहा कि रथ को ले चलो, और कृष्ण का रथ, कृष्ण ने रथ चलाया, आगे अश्वत्थामा का रथ, पीछे अर्जुन का रथ। अश्वत्थामा के घोड़े थक गए, नीचे उतर के भागा और अर्जुन को नजदीक आते देखा, मरता क्या नहीं करता, उसने हाथ में जल लिया और ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अर्जुन की तरफ रवाना किया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा, समझा नहीं क्या है, श्री कृष्ण को प्रार्थना करने लगे, हे आदि पुरुष कृष्ण, आप माया से परे हैं, हम आपकी शरण में हैं, ये गोला कौन सा आ रहा है मुझे पता नहीं लग रहा है, मुझे क्या करूं, मेरा रक्षक को आप मेरे ऊपर कृपा करो। ये पहली प्रार्थना अर्जुन की है, चार श्लोक में। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को रवाना किया है, तुम अपने ब्रह्मास्त्र से इसको निरस्त करो, खत्म करो। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को रवाना किया, एक दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और आपका गोला बना, चारों ओर से प्रलय होने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा अपना अपना अस्त्र वापस ले लो। अश्वत्थामा कहते मुझे अस्त्र वापस लेना ही नहीं आता, तो चलाया क्यों मूर्ख। भगवान ने अर्जुन को कहा कि दोनों अस्त्र तुम वापस ले लो और इसको शांत करो। और फिर अश्वत्थामा को पकड़ा अर्जुन ने और बांधा और रथ के अंदर डाला। तो श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि भक्त है, मेरा शिष्य भी है और भाई भी है, इसके पुत्रों की हत्या हुई है, देखें धर्म को जानता है कि नहीं, ऐसी अवस्था में धर्म के ऊपर अटल है कि नहीं। कृष्ण का इसको मार के इसका सर आपने कहा लेके आऊंगा ना द्रौपदी को, तो इसका सर लेके चलो, इसको क्यों ले चल रहे। अर्जुन कहता है नहीं, जो द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर आदि निर्णय करेंगे वो इसको दंड देंगे, मैं नहीं मारूंगा। भगवान ने देखा कि ये क्रोध में नहीं है, प्रतिशोध नहीं लेना जा रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। और जैसे बंधे हुए अश्वत्थामा को शिविर में लाया तो द्रौपदी पहले बोल पड़ी, ये पहली माता, द्रौपदी दादी है परीक्षित की, कहा ब्राह्मण को बांध के लाए हो, इसको खोल दो, इसको खोल दो, इसको खोल दो। अर्जुन आप इतने सारे पांडव वीर हो, इसके पिताजी आपके गुरु है, उसकी शिक्षा से आपका नाम विश्व में इतना प्रसिद्ध है, और आज गुरु हो अपने पुत्र के रूप में, आप ये उसका गुरु का पुत्र है, गुरु के समान है। और फिर द्रौपदी कहती है मेरे पुत्रों की हत्या होती है उसके दुख को मैं जानती हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि इसकी मां कृपी को इसके मृत्यु के ऊपर रोना पड़े। और आगे द्रौपदी कहती है मेरे आप पांच पति जीवित हो लेकिन इसका पिता आपका गुरु वो पहले वीरगति को प्राप्त हो गया, और क्षत्रिय इस तरीके से ब्राह्मणों को दंडित करेंगे तो वंश का विनाश हो जाएगा। छह कारण बताया द्रौपदी ने कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, कितनी महान है ये नारी जिसके पांच पांच पुत्र मारे गए और हत्यारे को कहती है छोड़ दो और उसके दुख को सह नहीं सकती, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई है, यज्ञ का है, कृष्ण का तो सखी के समान कृष्ण के साथ उसकी भक्ति। युधिष्ठिर महाराज ने कहा द्रौपदी ठीक कह रही है। भीमसेन ने कहा नहीं नहीं ये नारी है, स्त्री है, अब ये भावुक हो गई है, ये दुष्ट को तो मार देना चाहिए, क्रोधित हो गए। भगवान चार हाथों का रूप धारण करें, दो हाथों से द्रौपदी को शांत किया, दो हाथों से भीम को शांत किया। अर्जुन कृष्ण की ओर देखने लगे, कृष्ण ने कहा अर पार्थ मैंने वेदों में विधान रखा है कि ब्राह्मण का हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह भी मैंने वेदों में कहा है कि जो आतिता यो किसी के घर को आग लगाए, किसी का विष दे दे, किसी की पत्नी का हरण करे, ऐसे आतिताई का वध कर देना चाहिए। द्रौपदी का मनोरथ पूरा करो महाराज युधिष्ठिर, और भीम को नाराज मत करो, और मेरी इच्छा भी पूरी करो। अर्जुन बुद्धिमान था, समझ गया कि ब्राह्मण को शरीर से मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का धन छीन लेना, उसका अपमान करना उसके लिए मृत्यु से ज्यादा भयानक है। जन्म से अश्वत्थामा को एक मणि थी मगज के माथे के ऊपर, उसको निकाला अर्जुन ने और उसको निरादर करके बाल भी काट के ऐसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद पांडव और कौरव स्त्रियों को आगे करके गंगा के किनारे अपने युद्ध में वीर गति को प्राप्त भाई थे या पति थे या पिता थे, उनको जलांजलि देने के लिए गए। और वहां से वापस आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सब माताओं से विदा लेकर, कुंती से विदा ली, द्रौपदी से विदा ली, सुभद्रा से विदा ली, और रथ के ऊपर चढ़े और हस्तनापुर से द्वारका जाने के लिए तैयार हुए, और पांच पांडव सामने खड़े थे। उस वक्त विदाई के समय विधवा उतरा सफेद साड़ी में, अंदर से बाहर निकली। सब लोग आश्चर्यचकित हुए कि विदाई के समय विधवा को आना नहीं चाहिए, ये कैसे आ गई। लेकिन उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके, ये परीक्षित की माता है, इसकी शरणागति का ये अद्भुत श्लोक है। उत्तरवाच पाही पाही महायोगिम देव देव जगतपते, रक्षा करो रक्षा करो, कृष्ण को कह रही है। वो अपने पांच ससुरों के पास नहीं जा रही है, जो सामने खड़े हैं, अर्जुन खड़ा है, भीमसेन खड़ा है, इतने बड़े वीर हैं, उसके पास नहीं जा रही, किसी और के पास नहीं जा रही, सीधी कृष्ण के शरण में गई है कि मेरा रक्षा करो रक्षा करो, आप मां योगी हो, देवों में सब देवों का देव हो, जगत के पति हो, ना अन्यम त्वद अभयम पश्य, आपके अलावा कोई भय से बचाए संभव नहीं। और फिर कहते यत्र मृत्यु परस्परम, अरे सभी तो मरने के रास्ते में खड़े हैं, आप ही एक हैं जो निर्भय कर सकते हैं, बाकी सबको मृत्यु का भय सबके पीछे लगा हुआ है, दुनिया में कौन ऐसा है जिसको मृत्यु का भय नहीं है, आप ही एक हैं जो निर्भय हैं और निर्भयता दे सकते हैं। तो भगवान को कहा कि आप यहां अभयदान दे सकते हैं, हमको भय से मुक्त करा सकते हैं। और सब लोग भयभीत हैं संसार में, मृत्यु के भय से सदा ही ग्रस्त रहते हैं। तो सबने कहा कि स्त्री को भय कौन सा, मरने का भय है, अपनी रक्षा चाह रही है। तो एकदम कहती है नहीं, अभिद्रवंती माम ईशा, हे ईश्वर, कोई आग का गोला मेरी ओर आ रहा है, शर शर का मतलब तीर, एक आग का गोला तीर के रूप में मेरी ओर आ रहा है, तो क्या मरने से डरती हो। कामम दहतु माम नाथ, मेरे को भले जला दे, ये नाथ मुझे भले जला दे, और मेरे को जीने की इच्छा भी नहीं थी। दूसरा कहती है मैं तो पति के साथ सती हो गई होती, लेकिन मैं आपके भक्ति के अंतिम अंकुर, पांडवों के वंश के अंतिम अंश को अपने उदर में पाल के बैठी हूं, इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके भक्ति के वंश का विनाश हो जाएगा, मुझे मरने का डर नहीं। उत्तरा कहती है मैं मरने से, मेरे को जीने की कोई इच्छा ही नहीं है, लेकिन मां में गर्भो निपात यतम ना, मेरे गर्भ का पतन नहीं होना चाहिए, इसका पाप नहीं होना चाहिए, मेरा प्राण निकल जाए। दो ही श्लोकों में छोटे से छोटी प्रार्थना है, लेकिन शरणागति और भगवान के ऊपर इतना विश्वास है कि भगवान अधीर हो गए, रथ के ऊपर बैठे थे। और उस वक्त अश्वत्थामा ने क्रोधवश 6 ब्रह्मास्त्र रवाना किए, 5 पांडवों को ना मारने के लिए, और छठा उत्तरा के उदर में अंतिम पांडवों के अंश, अभिमन्यु के वंश का विनाश करने के लिए, और भक्ति के इस अंकुर को जलाने के लिए। पांडवों ने भगवान को प्रार्थना नहीं कही और न पांडव समझे भी कि क्या हो रहा है, लेकिन भगवान समझ गए कि पांच ब्रह्म अस्त्र पांडवों को मारने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को पांचों ब्रह्मास्त्रों को रोकने के लिए कह दिया और पांच ब्रह्मास्त्र समाप्त हो गए, पांडव जीवित बच गए। भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठे थे और उत्तरा के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठते हैं, वहां से उसके गर्भ में चले गए और गदा को घुमा घुमा कर और ब्रह्मास्त्र को शांत करके बच्चे की रक्षा कर दी। यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अभी तो युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र न उठाने का वचन किया था। भीष्म पितामह के सामने तो एक रथ का टूटा हुआ पहिया उठाया था, वो अस्त्र तो नहीं है, लेकिन आज तो साक्षात सुदर्शन चक्र को उठा लिया अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। पहले स्कंद भागवत में भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में दिखाई देते हैं, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन दशम स्कंद तक नहीं होगा। बीच में और भगवान के अवतारों का वर्णन है, कृष्ण का वर्णन नहीं, लेकिन पहले स्कंद में ऐसा पांडवों का रक्षा करते हुए दिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान को कोई कहे कि बड़ा मर्यादा वाला है, ये सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है जितना वो भक्तों का रक्षक है। अपना वचन टूटे लोग कहेंगे कि अपना वचन तोड़ दिया, मर्यादा मैंने बोला कोई बात नहीं, भक्तों की रक्षा होनी चाहिए। तो ऐसे परीक्षित की रक्षा हो गई और जैसे ये काम पूरा हुआ तो कुंती महारानी ने आकर कृष्ण के सामने कहा कि अब मत जाओ, अब रुक जाओ और स्तुति शुरू कर दी। तो दो माताओं के तो आपको भाव सुनाए, ये दूसरी तीसरी बड़ी स्तुति कुंती महारानी की। देखो पहली स्तुतियां भागवत में तीनों माताओं के भावों को प्रकट किया है, कुंती महारानी की स्तुति तो बहुत विलक्षण और विशेष स्तुति है। कुंती महारानी भगवान के सामने खड़ी होके भगवान को प्रणाम कर रही है, भगवान आश्चर्यचकित हो गए, भुआ है मेरी बड़ी है मुझे कैसे प्रणाम कर रही है। लेकिन आज कुंती कहती है नमस्य पुरुषम त्वाद्यम, आप आदि पुरुष हो, आपका मेरा नमस्कार है। ईश्वरम प्रकृतिम परम, आप प्रकृति से परे हो, आप स्वामी ईश्वर हो। अरे नहीं, मैं आपके भाई का बेटा हूं, वासुदेव का आपका भतीजा हूं। बोला नहीं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप आम व्यक्तियों के साथ ऐसे घूम रहे हैं, आपको पहचानना बहुत मुश्किल है। अंतर बाहर अवस्थितम, आप अंदर भी परमात्मा के रूप में है, नहीं तो उत्तरा के गर्भ में कैसे जाते और उसके गर्भ की कैसे रक्षा करते, आप अंदर भी हैं और आप बाहर भी हैं, मेरे बच्चों की रक्षा की मैंने आंखों के सामने देखा, तो ये ईश्वर के अलावा और कोई तो नहीं कर सकता। कुंती महारानी उद्घाटन कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो भगवान कहते फिर सबको पता क्यों नहीं लगता, आप जो मुझे कह रही हो मैं आदि पुरुष हूं ईश्वर हूं तो सबको पता क्यों नहीं लगता। तो माता कहते माया जवनी का छन्नम, आपकी माया ने सबके आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया, आपकी माया के कारण लोग आपको नहीं देख सकते हैं। अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम, लेकिन आप इंद्रियों से परे हैं, अविनाशी हैं, लेकिन आपकी माया ने आपको भगवत गीता के सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं नाम प्रकाशति सर्वस्य, सबके सामने मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूं, योग माया समावर्त है, मैं घूंघट निकाल के बैठता हूं, मेरे को कोई देखता नहीं और लोगों को माया ने ढक के रखा हुआ है। माया का काम क्या है, माया क्या करती है? माया दो काम करती है, माया जो असली चीज है उसको ढक देती है, उसको कहते हैं आवरणात्मक, आवरण का मतलब पर्दा, और माया जो नहीं है उसको दिखा देती है, उसको कहते हैं विक्षेप। माया के दो काम है और ये माया दो काम हम सबके ऊपर कर रही है। भगवान हमारे साथ आया है, हमारा मित्र है, हमारे हृदय में बैठा है, कभी हमको छोड़ता नहीं है, सदा हमारे साथ रहता है, उसको तो बुला दिया, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। और इस दुनिया के अंदर हमको पता नहीं कितने लोग अपने दिखा रही है, कितने दुश्मन दिखा रही है, कितने मित्र दिखा रही है, और उसके अंदर ऐसा फंसा रखा है कि जो हमारे साथ आया तो भूल गया। तो माया काम कैसे करती है, इसका उदाहरण कैसे दिया जाए। सिनेमा हॉल में कभी गए हैं आप लोग? जब सिनेमा में जाते हैं तो अपने किसी सगे प्रेमी के साथ जाते हैं, चाहे मित्र के साथ जाओ, चाहे पत्नी के साथ जाओ, या बच्चों के साथ जाओ, अपने परिवार के साथ जाते हैं ना, जब सिनेमा हॉल भर जाता है तो पहला काम क्या करते हैं? लाइटें बंद करते हैं ना, अंधेरा होता है ना, और जो साथ गए थे वो दिखता नहीं, जिसको ले गए थे, जिसका टिकट भरा था वो तो दिखता नहीं, और फिर पर्दे के ऊपर एक फिल्म चालू करते हैं। और उस फिल्म में कोई हीरो कोई हीरोइन, और हम उस हीरो को अपना समझते हैं, हीरोइन को अपना ही समझ अपना समझते हैं, उसके साथ ऐसा मिल जाते हैं, और जो उसका विरोधी विलियन होता है उसको गालियां देते हैं, और हीरो को तकलीफ आती है, हम रोने लगते हैं, 3 घंटे उस फिल्म में हम पागल होते हैं, और जो साथ आए थे उसको देखते ही नहीं है, हंस भी रहे हैं रो भी रहे हैं। और ये जानते हुए कि ये फिल्म है, इसमें कोई मरा नहीं है, किसी का कुछ गया नहीं है, ये सब पैसा कमा रहे हैं, और हम पैसा खर्च करके वहां बैठ के रो रहे हैं। ऐसे माया क्या करती है, भगवान जो हमारे साथ में है उनको तो ढक दिया, अंधारा कर दिया, और दुनिया के पर्दे के ऊपर एक बड़ी फिल्म चला दी है, ये तुम्हारा दुकान, ये मकान, ये घर है, ये तुम्हारी मोटर, ये तुम्हारा कारोबार, ये तुम्हारा पासपोर्ट, ये तुम्हारा, उसमें इतने फंसे हुए हैं कि वो जो साथ आया वही भूल गए। इंटरवल जब मृत्यु की होती है तब पता लगता है ये कोई काम का नहीं था, काम का एक वही था जो अंदर बैठा है, ये तो कोई साथ जाने वाला नहीं। तो ये माया का काम है, माया ये काम करती है, और ये माया सबको, और फिर कहती है न लक्ष्य मूढ़ दृशा, मूर्खों की दृष्टि में आपको देखा नहीं जा सकता है। बोला कैसे, उदाहरण क्या देती है, नटो नाट्य धरो यथा, जैसे कोई आपका ही बच्चा है, कभी ड्रामे में कोई वेश दूसरा पहन के आ जाए, मेकअप करके आए तो पहचानना मुश्किल होता है, मेकअप में पहचानना बहुत मुश्किल होता है। हरे कृष्ण। एक आदमी एप्पल के बॉक्स में नॉर्मल वाला फोन, जो पुराना नंबर वाला था ना, नोकिया वाला, वो लाके एक ब्यूटी पार्लर को गिफ्ट दिया। उसने बोला ये क्या है, बोला मैं एप्पल ने अंदर क्या निकला, बोला ये क्यों दे रहे हो, बोला तुमने ही मेकअप करके मुझे एप्पल जैसा नोकिया दे दिया। मुंबई में बहुत भारी बरसात हुई, बहुत बड़ी तबाही मची, तो पत्रकार सबसे पूछ रहे थे क्या तुम्हारा नुकसान, घर चला गया, ये बह गया, वो बह गया। अधेड़ उम्र की स्त्री से पूछा बताओ क्या नुकसान हुआ, बोला क्या नुकसान पूछते हो, सारा मेकअप धुल गया। बेटा पूछता है आंटी मम्मी कहाँ है। तो एक 35 साल की देवी बेहोश हो गई अस्पताल में, आईसीयू में पड़ी हुई थी, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान ने कहा मरोगी नहीं, डरो मत, और बच गई। डॉक्टर ने छुट्टी दी, डॉक्टर बोला नहीं, भगवान ने कहा है मरेंगी मरूंगी नहीं, अब मैं 35 की हूं तुम ऐसा ऑपरेशन करके मुझे कम से कम 28-27 से कम की बना के दिखाओ, मेरा फेस लिफ्ट करो, प्लास्टिक सर्जरी करो। 2-3 लाख रुपया खर्च किया, बहुत सुंदर होके छुट्टी हुई अस्पताल से, बाहर जा रही थी ट्रक आई और मर गई, और भगवान के पास पहुंची तो भगवान को शिकायत करने लगी, आपने कहा था मरूंगी नहीं, मैं इतना बड़ा परिश्रम किया, ऑपरेशन कराया, और भगवान ऐसे बोला मैंने आपको पहचाना नहीं, पहचानने में गलती हो गई, नहीं तो कभी मरने वाली नहीं, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज यू। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
हरे रामा
हरे रामा
हरे रामा
राम
रामा
हरे हरे
हरे हरे।
तो माता जी कहती है जैसे कोई मेकअप में हो और उसको पहचानना मुश्किल हो, ऐसे आप को भले हमारे बीच में घूमते हैं लेकिन आपको पहचानना आसान नहीं है। और फिर माता जी कहती हैं, ये बहुत बड़ा उद्घाटन कर रही है माता जी, लेकिन कहती है कि हम स्त्रियां कैसे समझ सकती हैं। यथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मानां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये मई स्त्रिया। मैं स्त्री हूं कैसे समझ सकती हूं, आप तो परमहंस जैसे महात्मा मुनि अमल आत्मा उनको भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, मेरे को कैसे। अब बता तो रही हो, इतनी बड़ी बात कह रही हो कि बड़े बड़े महात्माओं को भक्ति की शिक्षा देने के लिए आप आते हैं, हम कैसे आपको समझ सकती हैं। माता जी ये कहने के बाद कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान का नाम कीर्तन माता जी कर रही है और इस कीर्तन में गोविंद शब्द सुनते ही कृष्ण भगवान रथ से कूद के नीचे उतरे और माता के कुंती माता के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुके। ये श्लोक सुनते ही भगवान एकदम नीचे उतर गए, रथ पे बैठ नहीं पाए, कीर्तन सुना भगवान भाग के नीचे उतरे। पहले कहा कृष्णाय, बोला हाँ मेरा नाम कृष्ण, वासुदेव है हाँ मैं माँ अपने पिता वासुदेव के पास जा रहा हूं, देवकी नंदनाय, अरे देवकी जाऊंगा मेरी माता के पास। जैसे कहा नंद गोप कुमार आए तो वृंदावन याद आ गया, और गोविंद आए कहा तब तक तो सब भूल गए, नीचे उतर गए। तो भगवान अपने इन नाम कीर्तन से संतुष्ट हुए और भगवान झुकने लगे तो माता जी ने रोक के कहा नमः पंकज नाभाय। पहले कहते हैं आपको नमस्कार है, अरे भगवान उनको नमस्कार कर रहा है, भुआ है बड़ी है लेकिन वो भगवान को नमस्कार कर रही है। लेकिन भगवान लज्जित ना हो कहती है आपकी नाभि से गुलाब कमल निकला था, आप कमल ना कमल नाभि कमा नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, आपकी कमल की माला है, पहले नाभि फिर माला फिर नमः पंकज नेत्राय, आपके नेत्र कमल पत्र जैसे है। और फिर कहती है नमस्ते पंकज अंग्रिहे, आपके चरणों में नमस्कार, अंत में कहती है चरणों में नमस्कार, क्योंकि छोट भतीजा है कहीं लज्जित न हो जाए, चरणों का ना लास्ट में बोलती है, ऐसे भगवान को प्रणाम कर रही है माता जी। और फिर कहती है यथा ऋषिकेशेन खलेन देवकी कंसेन रुधाति चिरम सुचार पिता। आप इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश है, आपने अपनी माता देवकी को कंस के अत्याचार से बचाया, लेकिन उसके पुत्र तो मारे गए ना, उसके छह छह पुत्र मारे गए थे ना। विमोचितम स आत्मजा विभो, लेकिन मेरे को तो मेरे पुत्रों के साथ जीवित रखा, आपने अपनी मां से ज्यादा मेरी रक्षा की। भाई देवकी की कंस से रक्षा की ना, लेकिन देवकी के पुत्र तो मारे गए, लेकिन मेरे तो पुत्रों के साथ मेरे को आपने बचा दिया, ये मेरे पांचों पुत्र देखो जीवित बैठे। त्वयैव नाथेन मोहो विपद गणात, ये नाथ कितने हमारे ऊपर विपत्तियां आई, लेकिन कहीं कहीं हमारे एक भी बच्चे का बाल बांका नहीं हुआ, आपने अपनी मां से अपने पिता से भी मेरे को भुआ को ज्यादा सुरक्षा दी है, संरक्षण दिया है, रक्षण किया है ये माता जी। और फिर विपदियां बता रही है, मान भगवान ने कहा किससे बचाया, कौन सी विपत्ति से बचाया, विषान महाग्नेय, भीमसेन को बचपन में विष दिया गया आपने उसकी रक्षा की, महाअग्नि लाक्षा ग्रह में जलाया गया, ये लाक्षा ग्रह ये मसूरी से नीचे आगे जाएंगे 100 किलोमीटर एक जगह है उसको कहते ही अभी भी लाक्षा ग्रह ही कहते हैं, वहां एक पांडवों की गुफा आज भी बनी हुई है जिस गुफा के अंदर पांडव चले गए थे यमुनोत्री जाते हुए रास्ते में ये जगह आती है, वो लाखा ग्रह उसको कहते हैं। तो वहां बहुत से शिवलिंग और निकले हैं पूजा के लिए और बड़ी मूर्तियां निकली हैं, वहां खुदाई भी हुई है, तो ऊपर वो बड़ा है, वो जगह है जहाँ जहाँ लक्ष का महल बनाया था, ये कौरवों का राजधानी का हिस्सा था, मसूरी के पीछे है। तो उस अग्नि महाअग्नि से बचाया, पौरुषाद बड़े बड़े राक्षस हिडम्बा जैसी राक्षसी आई उससे बचाया, दर्शनाद असदा असभाया और असत सभा में जहां मेरी इस बहु द्रौपदी का अपमान निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जाया गया उसकी लज्जा को आपने बचाया। वनवास खृष्टतः, वनवास में कितने 12 साल हमारे वनवास में बच्चों को कितना संकट आया। मृदे मृदे अनेक महारत अस्त्रत, इस महाभारत की लड़ाई में कितने महान महारथियों ने अस्त्र शस्त्र चलाए, उन सब से मेरे बच्चों की आपने रक्षा करी। दारुण्य अस्त्रस्य चास्मि, अभी अभी आपने द्रोणाचार्य के ब्रह्मास्त्र से मेरे बच्चों की रक्षा करी। अभी रक्षिता, आपने कितनी रक्षा की है, पूरी महाभारत बता दी। एक श्लोक के ऊपर कथा करें तो महाभारत पूरी हो जाएगी। आपने इतनी जगहों पे हमारे बचपन से लेके बच्चों की रक्षा की है, और फिर महात्या जो कह रही है, ऐसी प्रार्थना आज तक किसी ने की नहीं है। विपद संतु तहा शश्वत, ये सारे दुख हमारे ऊपर बार बार आए, सदा आए। भगवान कहते हैं वह दुख भोग भोग के दुख लेने की आदत पड़ गई है क्या, तू भूल तो नहीं गई है, तेरे पिता पुत्र तेरा अब विश्व का राजा बन रहा है धर्मराज, वो राज सिंहासन पे बैठेगा, युद्ध जीत लिया है, तुम विपत्तियां क्यों मांग रही हो। तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, जो जो पहले दुख आए थे बार बार आए, क्यों हुआ क्या। भवतो दर्शनम यत स्यात अपुनर्भव दर्शनम, एक बार विपत्ति होती है, हम आपको याद करते हैं, आप आ जाते हैं, और आप आ जाते हैं तो फिर दोबारा दुनिया में जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा। तो कुंती महारानी क्या दुख मांग रही है, नहीं, भगवान का दर्शन मांग रही है, लेकिन दर्शन की कीमत चुकानी पड़ती है, और उस कीमत को चुकाने के लिए इस वाणी को, ये जो शब्द हैं, इसको गुरबाणी में ऐसे का ऐसे रखा हुआ है, दुख दारू सुख रोग भया, दुख दारू, दुख दवाई है, दुख भगवान को मिलाने वाली है, सुख रोग भया, हमको सुख मिला है और आप जा रहे हो, कौन सा सुख है ये, भगवान जाए तो सुख कौन सा सुख हो गया, और दुख में भगवान आए तो वो दुख कहां रह जाएगा। एक बार एक वो टनेल बनाते हैं ना, गुफाएं बनाते हैं गाड़ियों के लिए, तो एक गुफा ने शिकायत की सूर्य देव को कि हमारे अंदर अंधकार ही अंधकार रहता है। सूर्य ने बोला चलो मुझे दिखाओ, अब सूर्य आया तो अंधकार कहां से आए, अब सूर्य अंदर आया तो अंधकार कैसे दिखेगा, तो सूर्य आने के बाद तो अंधकार रह नहीं सकता, तो भगवान के आने के बाद तो दुख रह नहीं सकता, दुख भगवान के पीठ में, दुख पीछे चला जाएगा, आगे रहेगा ही नहीं। अगर आपको सुखी रहना है तो भगवान के सामने रहो, भगवान की कथा में बैठे रहो, कोई दुख नहीं, भगवान को पीठ दिया दुख चालू, उठते ही चप्पल ढूंढते दुख चालू चालू हो जाएगा, बाहर निकले नहीं मंदिर से दुख चालू हो जाएगा। सो कहती है भले बार बार हमें तकलीफ आए, कोई कष्ट आए, संकट आए, आपदियां आए, विपत्तियां आए, क्योंकि आपका याद करेंगे तो आप आ जाएंगे। दुख में समरे सबको, सुख में समरे न कोए, दुख में सब याद करते हैं भगवान को, फिर कहते हैं सुख में समरे तो दुख हो को कर। भाई सुख में अगर समरण कर ले अच्छा भला है तो फिर दुख आएगा ही क्यों, लेकिन आदमी सुख में समरण नहीं करते। और एक महात्मा का ये अच्छा शब्द है, सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सुख भी आया है चला जाएगा, दुख भी आया है चल, दोनों रहने वाले नहीं है इस दुनिया में, सब मेहमान, सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, उसको आदर दीजिए जो भेजे भगवान, भगवान की तरफ से आया है भले आओ बैठो, दुख जी महाराज बैठो, नहीं बैठेगा जाएगा, कितने दिन बैठेगा, 2-3 दिन बैठेगा अपने आप चला जाएगा। एक महात्मा के पास कोई गया कि महाराज कोई तावीज करके दो, कोई मंत्र मंत्र बताओ, बड़ा दुख कष्ट होता है, बोला ये मंत्र लिख के देता हूं, जब परेशानी हो तब खोलना, उससे पहले मत खोलना। अच्छा जी, बहुत संकट में आ गया, बोला महाराज का मंत्र खोलो, खोल के पढ़ा, पन्ने में लिखा है ये भी गुजर जाएगा चिंता मत करो, कुछ नहीं लिखा है, बोला ये भी टिकने वाला नहीं है चला जाएगा, ये मेहमान है, इसकी चिंता मत करो, आया है कुछ ना कुछ सिखाएगा। एक दरवाजा बंद करता है भगवान तो 10 दरवाजे वो खोलता है। ऐसा नहीं है कि बंद हो गया तो सदा के लिए बंद हो गया। इसलिए आशा की किरण हमेशा दिखाई देनी चाहिए और विश्वास के साथ आगे चलना चाहिए। अब माता जी कहती है 4 प्रकार के लोग भगवान आप को पाने में सफल नहीं होते और सब लोग ये 4 चीजें चाहते हैं और जिनके पास ये 4 चीजें हैं उनको भगवान नहीं मिलता। जन्म ईश्वर है श्रुत श्रुति भी एध्यमाना मद पुमान, 4 चीजों का मद हो जाता है। मद का मतलब नशा होता है। कौन सी 4 चीजों का नशा होता है? उच्च कुल में जन्म का, बड़े बड़े कुल में जन्म हुआ है, सुंदरता का, धन का और उच्च विद्या का, ये 4 चीजों का नशा। जिनको ये नशा हो जाता है, नैवा आर्य अभिधान तुम वही, वो प्रेम से आपका नाम नहीं ले सकते, उनके हृदय में उत्साह ही नहीं पैदा होगा। त्वाम अकिंचन गोचराम, आपको कौन, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका वो आपको पुकार सकता है, कुछ है तो उसी के सहारे बैठ जाएगा, आपकी ओर नहीं देखेगा। भागवत के 10वें स्कंद में नारद जी इन 4 को बड़ा नशा कहते हैं, लेकिन चारों में सबसे खतरनाक नशा है धन का मद। धन का नशा बहुत बड़ा भारी नशा है। ये नशा किसी के ऊपर चढ़ जाता है, न माता का ध्यान रहता है, न पिता का ध्यान रहता है, न भाई का, न बंधु का, किसी से, न पुत्र का, किसी का, अंधा कर देता है। इसको दौलत कहते हैं ना, दौलत कहते हैं ना, 2 लात मारती है, आते आते 1 लात ऐसी मारती है कि आदमी का गर्दन ऊपर हो जाता है, समझता है मेरे जैसा कोई और है नहीं दुनिया में। लेकिन वो टिकती नहीं है, जाते हुए दूसरी ऐसी कमर पे लात मारती है कि सर भी ऊपर उठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसका नाम 2 लात है, आते मारती है, जाते मारती है। और इसका वाहन क्या है, किसके ऊपर चढ़ के आती है ये लक्ष्मी देवी? जब धर्म के रास्ते में आती है, नारायण के साथ आती है, तो गरुड़ के ऊपर चढ़ के आती है और वेदों की ध्वनि के साथ आती है और वो स्थाई सुख देने वाला, समृद्धि देने वाला होता है। और जब बगैर नारायण के अकेले लक्ष्मी आती है तो उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है, और जब उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है तो आदमी को उल्लू का पट्ठा बना देती है, अंधा बना देती है। धन होना खराब नहीं है, लेकिन धन का नशा खराब है। कुर्सी खराब नहीं है, लेकिन कुर्सी का नशा खराब। ऐसे महात्मा कहता, कुर्सी किसको कहते हैं? कुर्सी, कुर्सी कहते हैं ना छोटी भाषा में, कुर्सी को कुर्सी कहते हैं। खुर कहते हैं पशु का, खुर होते हैं ना गाय का, गधे का खुर होता है ना, बोलो उसके ऊपर बैठने वाला आदमी अगर सावधान नहीं होगा तो पशु बन जाएगा, उसका माथा घूम जाएगा। कुर्सी का नशा भी बहुत बड़ा नशा है। तो ये 4 दोष हैं जो भगवान को हृदय से पुकारने का स्वभाव नहीं प्राप्त करते। फिर आप किसके धन हो? नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ते आत्मा रामाय शांताय केवल्यपत्ये नमः। आप तो धन हो किसका? जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका आप धन हो। और आप जिसको मिल जाते हो वो गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसको फिर किसी संसार के दुख की परवाह नहीं, वो अपने आप में आनंद लेता है और प्रशांत हो जाता है। तो माता की प्रार्थनाएं बड़ी अद्भुत हैं। मन्ये त्वम कालम ईशानम, आपको मैं काल मानती हूं, साक्षात आप समय, समय आपके अधीन है। हा समय बलवान है लेकिन समय आपके अधीन है। अनादि निधानम विधानम, आप सारी सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, पूर्ण करने वाले। माता जी ये कह के भगवान को कहती है आपकी दिव्य लीलाएं समझना बहुत मुश्किल है, न वेद हम नहीं जान सकते, कश्चित भगवान चिकीर्षिताम। आपकी लीलाएं समझना भगवान बहुत कठिन है। विडंबनम, ये विडंबना है। बोला क्यों हुआ, क्या हुआ बुआ? बोला न यस्य कश्चित दैतो अस्ति कदाचित। आपका कोई शत्रु नहीं, आपका कोई मित्र नहीं, लेकिन लोग समझते हैं कि आप किसके मित्र हो। आपका कोई शत्रु नहीं, आपका कोई मित्र नहीं, आप सबके समान है, सबके हृदय में बैठे हैं। भाई परमात्मा सबके हृदय में बैठा है ना। अब अगर अर्जुन की रथ के ऊपर सारथी बना है तो क्या दुर्योधन के हृदय में नहीं है क्या? तो फिर क्या दुर्योधन से दुश्मनी करेगा क्या? नहीं। लेकिन लोग समझते हैं कि उसका हितेशी है और उसका शत्रु है। ये लोग कितने हो मूर्ख है कि आपको समझ नहीं पाते हैं। आप तो किसी का हित नहीं करते हैं, लेकिन लोग ये बात समझ नहीं सकते हैं। और ये कहती है कभी आप अवतार लेते हैं नरसिंह के रूप में, कभी मच्छ के रूप में, कभी कच्छ के रूप में, कछुए के रूप में, कभी पशु में अवतार लेते हैं, कैसे आपको कोई जान सकता है कि आप क्या कर रहे हो? आपकी ये लीला, ये अवतार समझना बहुत मुश्किल है। और ये कहते कहते कुंती महारानी को भगवान की एक लीला याद आ गई। दिवाली के दिन वो गई हुई थी गोकुल में और कृष्ण 3 साल के थे और माँ यशोदा मटका फोड़ने के ऊपर कृष्ण को बांध रही थी और ये दृश्य कुंती महारानी ने देखा था। तो कह रही है याते दशाश्रु कलंजल संभ्रमाक्षम। मैंने देखा था आप आंखों से काजल आंसू के साथ बैर के बाहर गालों के ऊपर आ रहा था। वक्त्रम निमिन्य भय, और आपके मुंह के ऊपर चेहरे के ऊपर भय के आशा, बड़े आप डर रहे थे। सामाम विमोहयति भी अपि यदा बिभेति। अरे काल जिसके नाम से डरता है वो माता की छड़ी से भयभीत हो रहा था। अरे कैसे भगवान हो, मैं वो देखा लीला आपकी देखी है, काल आपके सामने थर थर कांपता है और आप माता के डंडे को देखकर थर थर कांप रहे थे, आंखों से काजल निकाल रहे थे और मुंह के ऊपर इतना भयभीत दिख रहे थे, तो आपकी इस लीला को कौन समझ सकता है? आपने अवतार क्यों लिया? कोई कहता है धरती का भार उतारने के लिए कहता है, कोई कहता है यदुवंशियों का नामाचार करने के लिए कहता है आपने अवतार लिया है, कोई कहता है वसुदेव और देवकी ने तपस्या की थी इसलिए उनके यहां अवतार लिया है। अरे माता तुम्हारा क्या विचार है मैंने क्यों अवतार लिया है? अरे ब्रह्मा जी ने कहा होगा आपको बुलाने के लिए आए थे इसलिए आपने अवतार लिया है। और कुछ और कहते हैं आपने अवतार क्यों लिया है? भवे अस्मिन कलिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी। जो संसार के अंदर लोग कर्मों में फंसे हुए हैं उनको एक सौभाग्य देने के लिए आपने अवतार लिया। कौन सा सौभाग्य? श्रवण स्मरणार्थानी करिष्यन्ति कश्चन। कुछ कहते हैं आप अवतार लेते हैं तब आपकी लीला की कथा हो रही है, तब आपके नाम का कीर्तन हो रहा है, तो ये कथा कीर्तन का लोगों को सौभाग्य देने के लिए आप अवतार लेते हैं। ये अच्छे से अच्छा कारण है अवतार का कि भगवान अवतार न लेते तो कथा कीर्तन भगवान का कैसे होता, लीला न करते तो आज यहाँ बैठ के कैसे हम टैगोर गार्डन में इस कथा का वर्णन करते, तो ये भगवान की कृपा है। अब माता जी कहते सुमरंती नंदंती त्वहितम जना। आप आते हैं तब भगवान आपका सुमरण लोग करते हैं, आपकी गुणगान करते हैं। गुनगुनाते हैं, गाते हैं और हमेशा गाते हैं, सुमरण करते हैं, आपका आनंद उसमें उनको आनंद मिलता है। और आपके जो सामान्य लोग हैं ना आपकी लीलाओं का वर्णन करते हैं वो आपको निश्चित रूप से समय पाने के ऊपर देख लेंगे। जो आपके नाम का स्मरण करते हैं सदा के लिए, जो आपकी कथा को सुनते हैं उसको बार बार उच्चारते हैं, आपके लीलाओं का वर्णन करते हैं, आनंद लेते हैं, आपके चरणों को निश्चित देखेंगे, और जो आपके चरणों का दर्शन करेगा उसको जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात माता जी कह रही है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणशः। शृण्वन्ति सुनने सुनता है, गायन्ति गाता है, गृणन्ति गुनगुनाता है। ये गुनगुनाने का मतलब क्या है? आप रसोई में काम कर रही हो ना, रोटी बना रही हो, तो भी हरे कृष्णा गा सकते हैं, गुनगुनाना आता है ना। अगर आप भोजन बनाते हुए भगवान का गीत गाओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो, तो कितना अच्छा है। काम तो हाथ में काम में है, तो मुख से नाम तो हो सकता है ना। और लोग ऐसे नहीं है गुनगुनाते नहीं है, लोग गुनगुनाते हैं। रोटी बनाते हुए माता जी गा रही थी, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर घुरा कोई उधर गिरा। अरे भैया तेरी दिल के टुकड़े हजार हो गए तो फिर सब्जी तेरी खाने वाले का क्या होगा। तो ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग गाते हैं, उससे अच्छा है भगवान का नाम गाना चाहिए। नहीं, गुनगुनाते तो है ना भाई, नहाते हुए गुनगुनाते हैं, पकाते हुए गुनगुनाते हैं, तो कहते तो गुनगुनाना ही है, तो भगवान का नाम ही गुनगुनाओ ना। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षण का मतलब रोज नेम से। सुमरन्ति नन्दन्ति त्वहितं जनाः, आपका सुमरण करते हैं, रोज नाम जपते हैं बैठकर। नन्दन्ति, बड़ा आनंद मिलता है उनको। तएव पश्यन्ति अचरेण तावकम्, वो जरूर जल्दी देखेंगे, दर्शन करेंगे। क्या? पदाम भोजम, आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे। क्या मिलेगा उनको चरण कमलों का दर्शन करने से? लाभ क्या होगा? भव प्रवाह उपरमम, भव प्रवाह उपरमम। भव प्रवाह का मतलब जन्म मृत्यु, वो जो चल रहा है ना, ये प्रभाव चल रहा है, इससे ऊपर उठ जाएंगे वो, तो आपके पास आपके धाम में आ जाएंगे। करना क्या है? भगवान का नाम गुनगुनाना है। कोई खर्चा लगता है इसमें? गुनगुनाना ही है तो भगवान का नाम गुनगुनाना। बहुत से लोग रोज काम पे जाते हैं, दो घंटे गाड़ी में, एक घंटे गाड़ी में, क्या करते हैं? अरे ऐसे भी मूर्खों को देखा है ट्रेन में ताश खेलते रहते हैं। अरे ये कोई काम है? अच्छा है, भगवान का नाम जप लो, इतना टाइम आपको मिला है कैसे भी, तो उसका सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते? अभी भी किसी मंदिर के बाहर चौपाल में बैठ के ताश खेलते, अरे भैया यहाँ भगवान का भजन करना चाहिए, उधर बैठ के मंदिर के बाहर बैठ के बड़े चौपाल के ऊपर बैठ के लोग खेलते रहते हैं। टाइम पास, वो कहते टाइम पास कर रहे हैं कि टाइम नाश कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, टाइम पास है कि नाश है? हाँ जी, टाइम का नाश कर रहे हैं ये जीवन में। आज कौन सी तारीख है? 18 फरवरी 2020 शाम का टाइम हुआ है 5:28। ये फिर हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा, हमेशा के लिए चला गया कि नहीं चला गया? और ये आज एक घंटा हो गया हम कथा सुन रहे हैं, ये हमारा अमर हो गया टाइम, ये टाइम अमर हो गया, क्योंकि हमारे कंधे के ऊपर धर्मराज का एक व्यक्ति बैठा है, उसका नाम क्या है? चित्रगुप्त। क्या नाम है? और चित्र किसको कहते हैं? फोटो को। और गुप्त किसको कहते हैं? सीक्रेट को, सीक्रेट फोटोग्राफर। वो हमारी सब फोटो निकाल रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं और कथा सुन रहे थे, एक डेढ़ दो घंटे कथा में बैठे थे। तो ये हमारा टाइम, ये जो है ये टाइम हमारा पास हो गया, मतलब हम पास हो गए, फेल नहीं हुए, दूसरों का नाश हो गया, हमारा पास हो गया। तो ऐसे जो टाइम अच्छे से अच्छा गुजरता है, ये माता जी बहुत अच्छी बात कह रही है। अभी तक तो आपने हमारी सहायता की, आज तक आपने हमारी कृष्ण सहायता की, आज आप जा रहे हैं, इतने सारे राजाओं से हमारे बच्चों की शत्रुता हो गई, तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा? कितने लोगों के, कितने राजाओं को मारे हैं इस महायुद्ध में, तो कितने शत्रु हमारे हो गए होंगे, तो अब हमारी रक्षा कौन करे? आपकी कृपा नहीं होगी तो हमारी रक्षा कौन करेगी? इतने सारे राजा हमारे शत्रु हो गए। माता जी अब अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। कहते हैं शरीर छूटते ही उस नाम आदमी का नाम शक्ल सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसे अगर आप चले जाएंगे तो हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो फिर हमारे यहाँ कुछ नहीं रहेगा। ये पांडव और यादव आपके पीछे चल रहे हैं, आप नहीं रहेंगे तो आत्मा जैसे शरीर से निकलता है ऐसे इनका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और फिर कहती है नेयम सोभिष्यति तत्र यत्थे यथे इदानीम गदाधर त्वदपादै अंकित भाति स्वलक्षण विलक्षित। हे गदाधर कृष्ण, हमारे राज में आपके चरणों के चिन्ह पड़े हैं इसलिए सौभाग्य है। आपके चरणों के निशान पड़े हुए हैं ना, इसलिए ये बड़ा सौभाग्यशाली है, इसलिए सुंदर लग रहा है। अब आप जा रहे हैं तो फिर इसकी शोभा समाप्त हो जाएगी। माता जी क्या कहना चाह रही है कि आप यहां रहो। प्रभुपद ने इस श्लोक के तात्पर्य में क्या लिखा है कि भगवान के चरणों में कुछ 18 चिन्ह होते हैं, 16 या 18 चिन्ह भगवान के चरणों में हैं। और जब भगवान चलते थे धरती के ऊपर वो चिन्ह निकलते थे। और महात्मा लोगों का कहना है कि उन चिन्हों का जब अगर कोई चिंतन करता है, 5-6 चिन्ह हमारे को जैसे याद हैं, भगवान के पांव के अंगूठे के नीचे इस जगह में जव का एक निशान है, जव जौ होता है ना जैसे गेहूं और जौ, इसका ध्यान करे तो अन्न का कभी अभाव नहीं होगा, अन्न के भंडार भरे रहेंगे। उससे थोड़ा नीचे पांव के अंगूठे से नीचे हाथी को नियंत्रण में रखने वाले अंकुश का चिन्ह होता है, जो इसका ध्यान करेगा उसका मन वश में रहेगा। अंकुश का काम है हाथी जैसे मदवा मत वाले मन को वश में करना। उसके नीचे वज्र का चिन्ह है, वज्र एक आग के गोले की तरह हथियार है जो इंद्र के पास होता है वो भगवान के, और जो इसका ध्यान करेगा उसके पहाड़ जितने भी पाप हो तो चूर्ण होकर समाप्त हो जाएंगे। उसके नीचे ध्वजा का चिन्ह है, ध्वजा झंडा है एक, उसका ध्यान करेगा उसके झंडा सदा झूलता रहेगा, वो नामाचार चलेगा। उसके नीचे कमल का निशान है और उसके पास में एक छत्ती का छाता का निशान है, उसको एक छत्री नहीं पहुंचेगी, हमेशा रक्षा रहेगी। ऐसे और भी बहुत सुंदर चिन्ह हैं और इन चिन्हों को कभी पढ़ना चाहिए। भगवान के चरणों को, भगवान के चरणों का ध्यान करो ऐसे सब लोग कहते हैं ना, तो ध्यान करो अंदर है क्या उसका पता तो करो कि उसमें क्या है, उसको कैसे देखना है। वो बिना डोरी के धनुष है दूसरे पांव में, सीधे पांव में क्या है, उल्टे पांव में क्या है, तो ये बहुत बड़े सुंदर चिन्ह है। इसका यहां वर्णन प्रभुपाद ने कुछ चिन्हों का यहां वर्णन किया है जो हमने आपको बताया। ये इन सब चिन्हों का वर्णन किया, चक्र का चिन्ह है, सुदर्शन चक्र का चिन्ह है। तो ये पांडवों की राजधानी की मानता थी। फिर माता जी कहती है ये जो हमारे खेतों में अन्न पैदा हो रहा है, फल फूल हो रहा है, पर्वतों से सोना चांदी निकल रहा है, क्योंकि आपकी नजर पड़ी है तब ये सब निकल रहा है। आपकी जहां दृष्टि पड़ती है वहां लक्ष्मी अपने आप प्रकट हो जाती है, तो ये सब आपकी कृपा है। अब माता जी एक बात कह रही है कि अब मैं पांडवों की रक्षा के लिए आपको प्रार्थना कर रही हूं, लगता है कि मेरा मोह हो गया है, इसलिए अथ विश्वेश विश्व आत्मन विश्व मूर्ति। भगवान को कहती हैं आप कौन हो, विश्व के ईश्वर हो, आप विश्व की आत्मा हो, आप विश्व की मूर्ति हो। स्वकेशु में स्नेह पासम, मेरे को जो ये अपने बंधु बांधवों में मोह हो गया है ना, इसकी ब्रसे को काट दो, पाश को काट दो। इमाम छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णेशु, ये पांडव मेरे पियर का घर है, मेरे पिता का घर है, और नहीं, पांडु मेरे पति का घर है और हमारा ये पुत्रों का यहाँ, और मेरा आप यादवों में वृष्णियों में वो मेरी माता का घर है, मेरे पिता का घर है, दोनों में मेरा मोह है, इसको छिन दो काटो। तो भगवान हंसने लगे, अरे मैं भी तो वृष्णि वंशी हूं, क्या तुम मुझसे भी रिश्ता काटना चाहती हो? भाई मैं भी तो हूं ना यदुवंशी, तुम कहती हो पांडवों और यादवों से मेरा रिश्ता ही काटो, मोह ही ना रहे, तो क्या तुम मुझसे भी रिश्ता काटने? भगवान ने ऐसे देखा होगा तो एकदम माता जी सावधान हो कहती है, त्वई मे अनन्य विश्या मतिर मधुपते। हे मधुपति, हे कृष्ण यदुपति, मेरी मति, मति कहते हैं बुद्धि को, भविष्य की बुद्धि जो किसको चुन ले उसको मति कहते हैं। मेरी मति है मधुपति रतिम, और उसकी रति का मतलब है प्रेम। मेरी बुद्धि में आपका प्रेम कैसे सदा के लिए आपकी ओर बहता रहे, गंगा जैसे, गंगा गंगोत्री से उतर के गंगा सागर की तरफ बिना किसी रुकावट के बहती है, ऐसे मेरी मति आपके चरणों की अर्थ और प्रेम से बहती रहे। आपसे नहीं काटना चाहती हूं रिश्ता, संबंधों के बंधन से मुक्त करो मुझे और अपने प्रेम का प्रसाद दो। अब श्री कृष्ण कृष्ण सखा कहती है, हे भगवान श्री कृष्ण, आप कृष्ण के सखा हो मेरे। ये कृष्ण के सखा का मतलब क्या है? अर्जुन के सखा हो। श्री कृष्ण कृष्ण सखा, अर्जुन का एक नाम कृष्ण है, कृष्ण सखा वृष्णिर सभानी, आप वृष्णि वंशों में सबसे श्रेष्ठ है, आपका अवतार क्यों होता है? गोविंद गोद्वेज सुरारी, हे गोविंद, आप गौ की रक्षा के लिए अवतार लेते, आप ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के, इनके आप शत्रु हैं, उनके जो शत्रु हैं उनका विशाल विनाश करते हैं। हरा अवतार है, आपका अवतार इसलिए होता है, आपके अवतार का उद्देश्य है। योगेश्वर अखिल गुरु, आप योगों के योगेश्वर, योगियों के ईश्वर है, सारे संसार के गुरु है। भगवान नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करती हूं। भगवान के अवतार का आप कारण बताती है, गो ब्राह्मण देव इनकी रक्षा के लिए, इनके शत्रुओं का नाश करने के लिए आप अवतार लेते हैं। हे गोविंद, मेरा आपको नमस्कार है। इस नमस्कार के साथ माता जी की प्रार्थना पूरी होती है। नमस्कार से प्रार्थना शुरू की, नमस्कार से पूरी की। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं, इस प्रार्थना को सुना सुंदर भगवान मुस्कुराए, और उस वक्त युधिष्ठिर महाराज ने आके कहा कि अब श्री कृष्ण आप जाइए नहीं, अब आप यहां हमारे पास रुक जाइए, अब आप यहीं रुकिए, जाइए नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ और समय रुक गए, अपने द्वारका जा रहे थे, उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया माता की प्रार्थना सुनकर। अब सब लोग इकट्ठे होकर युधिष्ठिर महाराज को कह रहे थे कि आप राज करो, अब राजा बन गए हो, आपने युद्ध जीत लिया, युधिष्ठिर बोले मैं राज नहीं करूंगा, मेरे कारण इस युद्ध में कितनी पत्नियों के पति बलिदान हो गए, बहनों के भाई मारे गए, माताओं के पुत्र मारे गए, मैं बहुत बड़ा घिनौना पाप किया है, इतने सारे लोगों के मारने का कारण बना हूं, और ये रक्त से रंगे हुए राज को मैं नहीं करूंगा। महाराज, राजा और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। बोला मैं राजा नहीं था, राजा तो दुर्योधन था। तो यज्ञ करो, यज्ञ करने से तो आपके पाप धुल जाएंगे। बोला नहीं, शराब का बर्तन शराब से धोने से साफ नहीं होगा। जो व्यासदेव समझाने के लिए आए, जो वेद लिखा है नहीं समझे, उनके अपने गुरु धौम्य ऋषि समझा रहे थे नहीं समझे, कृपाचार्य ने समझाया नहीं समझे, शिक्षा साक्षात भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे नहीं समझ रहे थे। जिन कारणों को अर्जुन ने युद्ध से पहले कहा है वो सब कारण युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज रो रहा है, और कृष्ण के समझाने से अर्जुन तो समझ गया लेकिन युधिष्ठिर समझ नहीं रहा, क्यों? भगवान श्री कृष्ण अंदर परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर को कह रहे थे किसी की बात मत मान, क्यों? बोला मैं इस वक्त तुम्हारे को उपदेश भीष्म पितामह से दिलाना चाहता हूं, मेरे कारण वो मेरे शत्रु के पक्ष का सेनापति होके लड़ा, इतना बड़ा कलंक उठाया, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए। आज मैं उसको श्रेय देना चाहता हूं। तो युधिष्ठिर महाराज को रात को नींद नहीं आ रही थी, ये सब दुख का चिंता कर रहा था। सोचा कि कृष्ण को जाके मिलूं, थोड़ा सा उससे चर्चा करूं, दुख कम हो जाएगा। कृष्ण के कक्ष में गया तो कृष्ण भी जाग रहा है और ध्यान में बैठा है। तो युधिष्ठिर को आश्चर्य लगा, ये कन्हैया तुम किसका ध्यान कर रहे हो, सब लोग तो तुम्हारा ध्यान करते हैं, छोटा भाई है कन्हैया। तो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, इस वक्त मेरा परम भक्त भीष्म मुझे याद कर रहा है, भीष्म मेरा ध्यान कर रहा है, इसलिए मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूं। कल आप सब लोग चलिए, हम कुरुक्षेत्र में चलेंगे और भीष्म पितामह से मिलेंगे। और ये कहने के बाद दूसरे दिन तैयारी हुई, सबके रथ सजे सुंदर, वस्त्र आभूषण सोना चांदी से ऐसा सुंदर, और हस्तनापुर का जो 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 राज मुकुट था वो महाराज युधिष्ठिर के माथे के ऊपर रखा गया। और ये चारों भाई भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों को लेकर कुरुक्षेत्र की तरफ रवाना हुए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसके पिता ने, बड़ा पिता का भक्त था, पितृ भक्त होने के नाते भीष्म पितामह के उसके पिता शांतिनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। और अब भीष्म पितामह 400 साल से ऊपर उम्र हो चुकी थी और सर सैया के ऊपर सोए हुए थे, बाणों की सैया के ऊपर सोए हुए थे और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्ष में, साल में दो भाग होते हैं, उत्तरायण और 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। उत्तरायण को शुभ माना जाता है, दो पक्ष ये दो उत्तरायण और दक्षिणायन होती है साल में, 6 ऋतु होती है। हम तो प्रायः 4 ही मौसमों की बात करते हैं, लेकिन 6 ऋतु है, 2-2 महीने की हर एक ऋतु। दो पक्ष होते हैं महीने के, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अंधेरे और चांदने। तो उत्तरायण का, उत्तरायण कब होती है, 14 जनवरी को जनरली। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसको उत्तरायण कहते हैं। वहां से 6 महीने तक उत्तरायण चलेगी, तो अब जुलाई तक उत्तरायण चलेगी, उसके बाद देव सो जाएंगे 4 महीने, तो फिर कोई काम शुभ नहीं होते हैं और फिर दक्षिणायन का समय शुरू होता है। तो महाराज उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कार्तिक के महीने के बाद युद्ध शुरू हुआ था, नवंबर का मिडिल में 18 दिन युद्ध चला, दिसंबर महीना पूरा गुजरा, जनवरी 14 आ रही, तब तक भीष्म पितामह वहीं तीरों की सैया पे सोए रहे। अब उन्होंने विचार किया कि अब शरीर त्यागना है, और इस समाचार को, इस संकल्प के समाचार को पूरे विश्व के अंदर ये समाचार पहुंच गया। बड़े बड़े ऋषि भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए आए। सूतवाच इति भीतः प्रजा द्रोहात् सर्वधर्म विवित्साया ततो विनश्यनम् प्रागात यत्र देवव्रतो पत अपतत। सुत गोस्वामी कहते हैं, बड़ा भयभीत था महाराज युधिष्ठर के, उनके द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत से लोग मारे गए हैं। वो उस जगह पे गए जहां भीष्म पितामह, ऐसे लगता है कि कोई देवता आकाश से गिरा है और पड़ा हुआ है, वहां पहुंच गए। तो ये समाचार वहां पहले ही पहुंच गया था, उनके भाई भी उनके साथ चले गए थे और बहुत सारे ब्राह्मण और ऋषि भी जा रहे थे उनके साथ। कौन कौन आए थे या नाम लिखा है, पर्वतो नारदो धोमयो भगवान बादरायण वृद शर्व भरद्वाज शिष्य हो रेणुका सुत वशिष्ठ इंद्र प्रमदत त्रीतो ग्रसमतो असीत कुक्षिवान गौतमो अत्रिस कौशिको अथ सुदर्शन। ये सब ऋषियों के नाम है, ये सब भीष्म पितामह के अंत समय पे वहां आए थे ये देखने की इच्छा मृत्यु का वरदान है। 400 साल का ये महात्मा मां भागवत पुरुष 12 महाजनों में एक महाजन है, कोई चमत्कार जरूर होगा, चलो देखें क्या होता है। और इनके अलावा कौन आया था? अन्य च मुन्यो ब्रह्मा ब्रह्मरात, ब्रह्मरात किसका नाम है? सुखदेव महाराज का, उसका नाम है ब्रह्मरात। अति आदे और चार कुमार आदि अमला जो बहुत पवित्र हैं, शिष्य उपेत आ जगमह, कश्यप ऋषि आया, अंगीरा आया, ब्रह्मा ये पहले ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप अंगीरा, ये सारे ऋषि आए। और आगे हम परीक्षित महाराज जब गंगा के तट पे बैठेंगे तब भी ये सब ऋषियों का नाम है, वो वहां आए। और इन सब ऋषियों का भीष्म पितामह ने विधिवत स्वागत किया, जैसी स्थिति उसमें बैठ के उनका मसन्मान किया, और ये सब भीष्म पितामह के सीधे तरफ आके बैठ गए राइट साइड, और लेफ्ट साइड में पांडव आगे खड़े हो गए, आगे युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और भीष्म पितामह ने भगवान भीष्म पितामह ने सबका स्वागत किया, युधिष्ठिर को देख के बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि मैंने अपने पिता को वचन दिया था जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में नहीं होगा तब तक मैं इसकी रक्षा करूंगा। आज युधिष्ठिर के हाथों में हस्तिनापुर का सिंहासन है, तो अब मैं निश्चित हो कि प्राण त्याग सकता हूं। लेकिन कहा कि कृष्ण कहां है? कृष्ण चरणों की तरफ खड़े थे, तो यहां लिखा है कृष्ण च तत् प्रभावज्ञ, कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। आसीनम जगत ईश्वरम, ये भी जानते थे कि जगत का ईश्वर है और सामने खड़ा है। हृदय स्तम पूज्यम, लेकिन अपने हृदय में उसकी पूजा की, कि बाहर से आया चला जाएगा लेकिन दिल में जो बैठा है वो तो कहीं नहीं जाएगा ना। बाहर से आए हैं चले भी जाएंगे, अंदर बैठे हुए वो तो कहीं जाने वाले नहीं है ना। माया उपहात विग्रह, ये भगवान का जो रूप है, ये भगवान का रूप सामने है, उन्होंने उसको हृदय में उनको हृदय में बिठाया और उसका पूजन किया, और विधिवत सब जब का पूजन कर लिया उसके बाद युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखद वहां बैठे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने संकेत से भीष्म पितामह को कहा ये आपका पोता राजा नहीं बनना चाह रहा, आप इसको शिक्षा दीजिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं महाराज हे पांडव, युधिष्ठिर आप तो धर्मराज हैं, ये आपके पांचों भाई ब्राह्मणों के भक्त हैं, धर्म के ऊपर चलने वाले हो आप सब, भगवान श्री कृष्ण आपका साथी भी है, सारथी भी है, संदेशवाहक भी है, सेक्रेटरी भी है, सचिव भी है, फिर आपके जीवन में इतने सारे कष्ट कहां से आए? इतने बड़े दुख तकलीफें आपने कैसे उठाए? पहले धर्मराज हो, स्वयं धर्म, फिर धर्मात्मा हो, शास्त्रों के ऊपर चलने वाले हो, ब्राह्मणों का सेवा करने वाला हो, भगवान जिसके मित्र हो उसको भी तकलीफ। तो युधिष्ठिर महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया। भीष्म पितामह कहते काल बलवान है, समय जब बदलता है ना तो बड़े बड़ों को तकलीफ आ जाती है, तो समय के कारण आपको तकलीफ आई, कर्मों के कारण नहीं। और उसके बाद भीष्म पितामह ने ऐसे उंगली को उठाया और कृष्ण के ऊपर निशाना करके कहा वो समय इसकी इशारे पे चलता है, ये सब इसका किया हुआ है, इसने ये सब आपको संकटों में डाला ताकि आप जैसे आग को आग में सोने को डाला जाता है ताकि कुंदन बन जाए, मार्बल के पत्थर को छीनी से पीटा जाता है ताकि मूर्ति बन जाए, पूजित हो जाए, ऐसे आपको सुंदर बना दिया, आपको विश्व में विख्यात बना दिया, ये इसके इशारे। युधिष्ठिर कहता है फिर हमको बताया क्यों नहीं? बोला इसके मन की बात ब्रह्मा जी चिड़ा, शंकर जी नहीं जानते हैं, नारद नहीं जानते हैं, बड़े बड़े देवता नहीं जानते हैं, हम और आप कहां से जान सकते हैं। इसका काम करने का जो शैली है वो बड़ी अद्भुत है, और ये इशारे काम के इसके इशारे, इसलिए ये समझना चाहिए भक्तों के जीवन में संकट आते हैं वो उनके कर्मों के नहीं होते, वो भगवान की तरफ से उनको किसी परीक्षा से गुजार के पक्का करने के लिए होते, ताकि वो पक्का हो जाए, उसमें कच्चापन खत्म हो जाए, आसक्ति खत्म हो जाए। तो भगवान परीक्षा लेते हैं और इतनी ही लेते हैं, इसको उदाहरण ऐसे देते हैं। देखिए, आपके घर में कोई बाहर का आदमी आके चोरी करके कुछ जाए तो उसको पुलिस के हवाले करते हैं ना। लेकिन आपका बेटा ही आपकी जेब से 500 रुपए निकाले तो क्या करोगे? पुलिस को दोगे? नहीं ना। फिर उसको आप कान पकड़ के एक थप्पड़ मार दोगे और क्या करोगे? तो ऐसे भगवान अपने भक्तों को स्वयं ही शिक्षित करते हैं जब उनसे कोई त्रुटि होती है। तो और यमराज को नहीं देते, कहीं और नहीं देते, स्वयं ही उसको परीक्षा से निकालते हैं। तो इस प्रकार भीष्म पितामह की स्तुति, अब 11 श्लोकों में भीष्म पितामह स्तुति करेंगे। उससे पहले युधिष्ठिर महाराज, और ये कहने के बाद भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, मेरे ख्याल में समय आज का हो रहा है। भीष्म स्तुति बहुत अच्छी है, इसका कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, सब लोग मेरे ख्याल में जाना है, खाना पकाना है और थक भी गए हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।